दिन भर 25 अक्टूबर शुक्रवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला को बीजेपी कांग्रेस किसी से परहेज नहीं।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा, जननायक जनता पार्टी सरकार बनाने का प्रयास करेगी।
महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी।
अभी तो ये सेने वाला है ना, वो आदित्य ठाकरे वही भी मुख्यमंत्री होने वाला मांगता है और वही होएगा।
और विवेचना में चर्चा, यशवंत सिन्हा को गुस्सा क्यों आता है?
इस बात की हिमायत की थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, लेकिन 2014 का चुनाव आते आते मुझे यह आभास हो गया था कि चलना मुश्किल होगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी तक किसी पार्टी ने सरकार बनाने का आधिकारिक तौर पर दावा नहीं किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस या बीजेपी किसी के भी साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का विकल्प खुला रखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात अब नहीं होगी और बीजेपी के साथ शिवसेना सत्ता में बराबरी की भागीदार होगी। इराक में ग्रीन जोन में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खबरें हैं कि आंसू गैस के कनिस्तर से चोट लगने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। इराक में भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं के विरोध में प्रदर्शनों का ये पहला दिन था। इराक में प्रमुख शिया धर्मगुरु ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। कुछ प्रदर्शनकारी सरकार से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी ने कहा कि इससे देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है कि जिन लोगों ने सुधारों का विरोध किया और उन्हें साजिशों के लिए हथियार बनाया, वो आज सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिना किसी संवैधानिक विकल्प के सरकार का इस्तीफा देश में अराजकता पैदा कर देगा। ये थे इराकी प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी के शब्द। पिछले साल अक्टूबर में एक इंडोनेशियाई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में अंतिम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में बोइंग 737 मैक्स विमान के डिजाइन में कमियां बताई गई हैं। साथ ही दुर्घटना के लिए ग्राउंड स्टाफ और चालक दल की गलतियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। वहीं बोइंग का कहना है कि वो इस रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन करेगी, लेकिन उसने पहले ही विमान में कई बदलाव कर लिए हैं। रिपोर्ट को लेकर इस मामले में मुख्य जांचकर्ता नूर चायो हुटुमो ने कहा,
We found 9 items that we consider contributes to this accident.
हमने उस हादसे के पीछे 9 कारणों को जिम्मेदार पाया है। ये कारण एक दूसरे से जुड़े पाए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से एक भी उस दिन नहीं हुआ होता तो वो हादसा टल सकता था। ये थे मुख्य जांचकर्ता नूर चायो हुटुमो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोलोमन द्वीप की सरकार ने चीन को तुलागी द्वीप लीज पर देने की योजना खारिज कर दी है। ये फैसला चीन के प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच लिया गया है। चीन की एक सरकारी कंपनी ने तुलागी द्वीप को लीज पर लेने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब सोलोमन द्वीप की सरकार ने कहा है कि यह समझौता गैरकानूनी था और इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। ब्रिटेन के एसेक्स में गाड़ी में 39 लोगों के शव बरामद होने के बाद पुलिस ने अब 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इन तस्करों में 38 साल के एक पुरुष और महिला शामिल हैं। उन्हें उत्तर पश्चिमी शहर वॉरिंगटन से पकड़ा गया है। इस मामले में 25 साल का एक ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दे दी है। नवाज शरीफ इस समय भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्हें तबीयत खराब होने के कारण सोमवार को अस्पताल ले जाया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी साइबेरिया में एक सैन्य ठिकाने पर एक सैनिक ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 8 सैनिकों की जान चली गई और 2 घायल हो गए। गोलीबारी करने वाले सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमला चेटा शहर के पास एक रिपेयर फैसिलिटी में चेंज ऑफ गार्ड के दौरान हुआ। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। संदीप सोनी के साथ। हरियाणा में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को गठबंधन सरकार बनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस किसी से परहेज नहीं है। इसके लिए उनकी बस एक ही शर्त है और वो शर्त ये कि गठबंधन करने वाली पार्टी को उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत होना पड़ेगा। दिल्ली आए दुष्यंत चौटाला ने कहा,
कई साथियों ने जहां बात करी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई जाए। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। उस परिस्थिति में कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी।
ये थे जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, इस समय चंडीगढ़ से टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। अरविंद, सुना आपने दुष्यंत चौटाला को गठबंधन सरकार बनाने के लिए बीजेपी या कांग्रेस किसी से परहेज नहीं है, इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है?
जी देखिए, जिस तरीके से संदीप दुष्यंत चौटाला को परहेज नहीं है, वो कांग्रेस को भी समर्थन देने को तैयार है, बीजेपी को भी। उनका कहना है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका लागू करेगा, जैसे कि पेंशन देनी है, बुढ़ापा पेंशन है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो उसके साथ तो साथ देने को तैयार है, समर्थन देने को तैयार है। इसी तरीके से भाजपा और कांग्रेस के भी जो नेता है उनका भी यही कहना है कि हमें कोई परहेज नहीं है उनका समर्थन देने में, बल्कि उनका ये भी कहना है कि वो जिस तरीके की चीजें चाहते हैं वो उसको लागू कर सकते हैं। हुड्डा ने तो ये भी कहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में भी शामिल था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि क्योंकि भाजपा केवल 6 ही सीटें दूर है बहुमत हासिल करने से, यानी 40 उनके पास है, 46 का आंकड़ा चाहिए, तो ऐसा लगता है कि वो काफी करीब है उसके। और कल उनकी विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि मनोहर लाल खट्टर को उनका विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद ये संभव है कि वो समर्थन लेते हुए बाकी जो निर्दलीय पार्टी है और अपना वो दावा ठोक सकते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इस बीच ये मैं आपको बता दूं कि जो निर्दलीय जो कुछ हैं विधायक है, उन्होंने पहले ही समर्थन दे दिया है, तो ऐसा लगता है कि भाजपा भले ही उन्हें बहुमत हासिल ना हुआ हो, लेकिन 6 ही सीटें दूर है, 6 ही विधायक उन्हें चाहिए और संभवतः वो जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है।
बहुत शुक्रिया, ये थे चंडीगढ़ से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। हरियाणा के बाद बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार किस शक्ल में बनेगी, आम लोगों को इस बारे में क्या लगता है, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने मुंबई में मशहूर डिब्बा वालों से बात की।
अभी तो ये सेने वाला है ना आदित्य ठाकरे, वही भी मुख्यमंत्री होने वाला मांगता है और वही होएगा, हमारी तो इच्छा वही है, वही मुख्यमंत्री बनना मांगते है।
अगले बार भी बोला था क्या सेने वाले को हम मंत्री पद देंगे, तो अभी तक क्यों दिया ही नहीं है उन्होंने, अभी देना मांगता ही है।
अभी जो ये बिल्कुल पेच फंस गया है जाकर, ये खत्म होगा या नहीं होगा या और अभी मामला और लंबा खींचेगा?
नहीं नहीं, ये जो फंस गया है वो फंसने वाला है, उसके ऊपर कुछ इतना जल्दी तो असर नहीं होने वाला, कुछ निकलने वाला नहीं है। और हम जो चाहते है कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए वो मुश्किल है, अगर बनना चाहिए हमारी इच्छा है,
लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा सीट है, शिवसेना के पास कम सीट है, तो इसमें पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा?
वो तो कुछ बोल नहीं सकता।
क्यों बनना चाहिए ये बताइए?
शिवसेना मुंबई के लिए होना बहुत जरूरी है, उसका मुख्यमंत्री वहाँ पे जो आम आदमी है और शिवसेना है तो आम आदमी है।
आप बताइए कि अब जो ये सरकारों में, अब तो सीधे राजभवन में होना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, दावा पेश कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो कोई गया ही नहीं है।
अभी तो जिसका सीट ज्यादा आएगा तो उसका सरकार बनाने वाला है, वो तो
सबको पता है, आम लोग को इसका राजकारण मालूम नहीं है, किसका कितना सीट है, कितना कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है।
डब्बे वालों के लिए क्या मायने रखता है सरकार का, यहाँ पर कितनी सरकारें आई होंगी गई होंगी, आप लोगों का काम जारी है उसी तरह से?
नहीं ऐसा तो
खड़े हुए हैं अपने,
हम लोग है इधर खड़ा वो बात सही है, लेकिन वो हमेशा शिवसेना हमारी, हम भी शिवसेना वाला है, शिवसैनिक रहेगा। और हमारा जो मैं बोला ना अभी आदित्य ठाकरे आने वाला मुख्यमंत्री होने वाला होना चाहिए, वो तो जरूरी है, क्यों हमारा जो मराठी आदमी के लिए वही सही है।
लेकिन सरकारें आई और गई, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा उससे?
नहीं फर्क तो कोई नहीं, सरकार आता है जाता है, लेकिन महंगाई बढ़ता है, कम किधर होता है, वो पूरा बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, सब महंगाई बढ़ गया ना। इधर स्कूल का जो आदमी बच्चे लोग पढ़ते हैं, अभी मेरा भी लड़की पढ़ता है, जो जो पढ़ते हैं उसको मालूम है ना कितना फीस डबल ट्रिपल फीस बढ़ गए। वो हमारे डब्बे वाले को ऐसा सादा जितना 15-16 हज़ार रुपया मिलता है उसमें क्या पढ़ने वाला है, कैसा बच्चे लोग को कैसा पढ़ाएगा, जो 2.5 लाख 3 लाख उसका एक साल का फीस है, तो हम लोग कैसा उसको बच्चों को पढ़ाने, जितना महंगाई बढ़ गया ना हम लोग को तो नहीं पढ़ते, हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं।
तो सरकार कोई भी दावा पेश करे किसी की भी बने, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको चाहिए महंगाई पर नकेल और जो बढ़ रही है शिक्षा की फीस उस पर लगाम चाहिए, ये यहाँ के डब्बे वालों की इच्छा है। सलमान रवि, BBC मुंबई।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहाँ कल झाबुआ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आने से कमलनाथ सरकार को मजबूती मिली है। ज्यादा जानकारी भोपाल से सूर्य नियाजी की रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। यह जीत मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए बहुत ही राहत भरी रही है। कांग्रेस ने न सिर्फ यह सीट 6 साल बाद भाजपा से छीनी है, बल्कि अब 203 विधायकों की विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। पार्टी के 115 विधायकों के साथ ही एक निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल सरकार का हिस्सा है, जिससे पार्टी को 116 विधायकों का समर्थन मिल जाता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि इससे साबित है कि पार्टी पर लोगों का विश्वास कायम है।
झाबुआ की जीत स्पष्ट है कि लोगों को विश्वास कांग्रेस पर है। जो हो सका 10 महीने क्यों, 7.5 महीने 2.5 महीने तो लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता में गए, पर लोगों को ये विश्वास हुआ, एक वातावरण की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है। और ये घोषणाओं और ये कलाकारी का समय अब समाप्त हो गया।
इस जीत के बाद विपक्षी भाजपा के लिए यह कहना आसान नहीं होगा कि सरकार को हम जब चाहे तब गिरा सकते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा नेता लगातार दावा करते रहे हैं कि वो जब चाहे तब सरकार को गिरा सकते हैं। हालांकि इस हार के बाद भाजपा के अंदर ही अनबन शुरू हो गई है। विधायक केदारनाथ शुक्ला ने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को हटा देने की मांग कर डाली, हालांकि उन्हें फौरन कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने हार की समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने झाबुआ चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है।
जिस तरह से वहां मध्य प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जिस तरह से चुनाव में झोंका, उनको मतदान केंद्रों के टारगेट दिए गए, हम ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं इसका असर भी चुनाव के परिणाम पर हुआ है।
वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है, भाजपा के लिए अब उसे घेरना आसान नहीं होगा। गिरिजाशंकर कहते हैं,
इस चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी का जो बयानबाजी थी नेताओं की कि हम सरकार कल गिरा देंगे परसों गिरा देंगे, वो खोखला साबित हो गया अब, क्योंकि अब जो है इनके पास एक विधायक इनका है वो जायसवाल, तो 16 हो गए, तो अब इनको किसी और के समर्थन की जरूरत भी नहीं है। तो अभी तक जो नैतिक रूप से जो एक अड़चन थी कांग्रेस के सामने, कानून रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, कानून रूप से तो समर्थन था इनके पास लोगों का, जो नैतिक रूप से एक संकट था उनके सामने, कांग्रेस उससे उबर गई और एक बेहतर मौका था इस चुनाव को जीतकर नैतिक रूप से एक सवाल खड़े करते कांग्रेस के सामने, सरकार के सामने, बीजेपी वो मौका चूक गई।
कमलनाथ सरकार को बसपा के 2, सपा के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पहले से ही है। कमलनाथ को कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन इस जीत ने उन्हें पार्टी के अंदर भी मजबूत किया है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज भोपाल।
BBC इंडिया बोल।
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के क्या है मायने? क्या अति आत्मविश्वास की वजह से लगा बीजेपी को झटका या बेअसर साबित हुए राष्ट्रीय मुद्दे? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 26 अक्टूबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त कॉल करें 1800-11700 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की आत्मकथा प्रकाशित हुई है रिलेंटलेस, जिसमें उन्होंने आईएएस बनने से लेकर राजनीति में आने और फिर भारत के वित्त और विदेश मंत्री बनने के बाद बीजेपी से इस्तीफा देने तक की कहानी बहुत ही रोचक अंदाज में बयां की है। यशवंत सिन्हा की जिंदगी के रोचक पहलुओं पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
1991 के लोकसभा चुनाव की बात है। पटना में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जब चुनाव प्रचार करके लौटे तो उन्होंने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के बीच वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपना इंतजार करते पाया। वो उनके हस्ताक्षर के लिए एक फाइल लेकर आए थे। भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा ने तय किया था कि भारत स्टेट बैंक में रखे अपने 20 टन सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखेगा ताकि विदेशी भुगतान के लिए जरूरी 40 करोड़ डॉलर जुटाए जा सके। यशवंत सिन्हा ने फाइल पर दस्तखत कर उसे प्रधानमंत्री के लिए मार्क कर दिया। उस दिन उन्होंने अपने आप से प्रण किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो भारत को आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि भारत दूसरे देशों से कर्ज लेने के बजाय उन्हें कर्ज देगा। 7 साल बाद ये मौका आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में लिया। यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस के लिए चुने गए और पूरे भारत में उन्हें 12वां स्थान मिला। आरा और पटना में काम करने के बाद उन्हें संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया। उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने वहां का दौरा किया और यशवंत सिन्हा की उनसे झड़प हो गई। यशवंत सिन्हा याद करते हैं,
कुछ लोग मेरी शिकायत करने लगे वहां पर, जो लोग खड़े थे तो हमसे सवाल पूछते रहे और खास करके जो सिंचाई मंत्री थे वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवली आक्रामक होकर हमसे सवाल पूछते रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि आप जिला कलेक्टर होने योग्य नहीं हो। जब ये यहां पहुंची बातचीत तो मैंने मुख्यमंत्री की तरफ देखा, मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे इस तरह आप मत ट्रीट करें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं किसी को। तो मुख्यमंत्री भाप गए कि मैं गुस्से में था, तो उन्होंने वहां की मीटिंग तो बर्खास्त कर दी। उसके बाद हम लोग एक कमरे में गए चाय पीने के लिए, वहां पर उन्होंने हमारे ऊपर ही आरोप लगाया कि आपको इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आपके मंत्री को नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं आज कलेक्टर हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन कलेक्टर का पद रहेगा और उस पद की गरिमा को आप नष्ट कर देंगे लोगों के सामने तो उससे प्रशासन को धक्का लगेगा। खैर वो बात बढ़ती चली गई दुर्भाग्य से, और उन्होंने फिर टेबल पर मुक्का मारा मुख्यमंत्री महोदय ने, और उन्होंने अंग्रेजी में हमसे कहा कि डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू, जोर से चिल्ला के कहा इस बात को। तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने कागज संभाले जो टेबल पर पड़े थे और मैंने उनसे कहा कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आई कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर वन डे बट यू कांट बिकम एन आईएएस ऑफिसर। फिर उसके बाद उसी दिन हमारा ट्रांसफर हो गया, रात को खबर आई पटने से।
कुछ दिनों के बाद यशवंत सिन्हा को पश्चिम जर्मनी के भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर भेजा गया। उसी दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री ललित नारायण मिश्र ने अपने स्पेशल असिस्टेंट एनके सिंह, जो बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, के साथ जर्मनी का दौरा किया।
वो लोग आए थे एक्चुअली लंदन, तो लंदन से एनके सिंह ने हमको फोन किया कि हमारे मंत्री को जर्मन चश्मे के फ्रेम जो होते हैं वो बहुत पसंद है, तो 5-6 चश्मे के फ्रेम को खरीद के तो मिलने आओगे ही फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर, तो लेते आना। तो मैंने कहा ठीक है लेता आऊंगा। तो मैं जब बाजार गया उस समय मैं चश्मा नहीं लगाता था खुद, इसलिए क्या कीमत है फ्रेम की आइडिया नहीं था। तो मैं जब बाजार गया तो मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट था तो मैंने 5-6 फ्रेम्स खरीद के मंत्री जी के लिए रखे। और जब फ्रैंकफर्ट में उनसे मुलाकात हुई, मैं हवाई जहाज के अंदर गया उनको देने के लिए, और एयर इंडिया का जहाज था उसमें वो बैठे थे, तो उनको मैंने फ्रेम दे दिया। उन्होंने वो सब फ्रेम्स देखे और बहुत खुश हुए। फिर इधर उधर की बात होती रही, मैं अंदर अंदर सोचता रहा कि भाई हमारे इतने पैसे खर्च हो गए हैं, मंत्री महोदय हमको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा, नहीं देंगे अगर तो हम मांग भी नहीं सकते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। यही उधेड़बुन में था और प्लेन के खुलने का वक्त हो गया, तो जब हम उठे उनको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए, तब उन्होंने कहा एन के सिंह को कि भाई एन के, वो यशवंत कितना पैसा लगा था यशवंत बताइए। तो मैंने उनको बताया कितने मार्क्स, जर्मन मार्क्स लगे थे, तो उसका हिसाब करके उन्होंने उससे कुछ ज्यादा ही कह के एन के सिंह को ये हिदायत की कि वो उतने डॉलर्स हमको दे दें, और एन के सिंह ने उतने डॉलर्स हमको दे दिए। मैं खुशी खुशी प्लेन से निकल गया। लोग समझते हैं कि साधारणतया मंत्री वगैरह जो है वो मुफ्त की सेवा लेते हैं, लेकिन मिश्र जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पैसे चुकाए हमको।
जर्मनी से लौटने के बाद उन्हें वापस बिहार भेजा गया और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें अपना प्रधान सचिव बनाया। दिलचस्प बात यह थी कि मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के सचिव के लिए तो एक बड़ा कमरा था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के लिए कोई कमरा नहीं था। जब भी वो सचिवालय आते, वो सिन्हा की मेज और कुर्सी पर ही बैठकर अपना काम करते।
बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे और उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और डिसऑर्गेनाइज वो जरूर थे, वो अपने जीवन को जिस तरह वो जीते थे वो भी एक अजीब कहानी थी। तो हम लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री सचिवालय में जो लोग काम करते थे उनके लिए बराबर एक चुनौती रहती थी कि हम कैसे उनसे काम निकाल लें, और काम निकालने के लिए हम लोग उनको पकड़ते थे कि अब आपको समय निकालना पड़ेगा। घर में रह के तो वो काम कर नहीं सकते थे, कोई ना कोई आता। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों नहीं ऐसी जगह चले हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं हो कि हम लोग वहाँ पर है। तो पटने के आसपास कुछ डाक बंगले थे, कुछ थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया कि शाम को सब फाइल लेके हम लोग जाते थे और कर्पूरी जी के साथ बैठकर वहाँ पर फाइल का डिस्पोजल होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो हम उनको बता रहे हैं कि फाइल में क्या है, तब तक मैंने देखा कि सो गए, तब उस समय हम लोग उनको छोड़ के चल देते थे। कर्पूरी जी बड़े भारी हिंदीदा थे, मतलब उनकी मौजूदगी में अंग्रेजी में अपने अंदर भी सोचना भी एक गुनाह था।
लेकिन अंग्रेजी समझते थे?
अरे अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, समझने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान था उनको, और जब लिखते विखते थे तो बहुत अच्छा लिखते थे। लेकिन उनका ये था कि नहीं साहब, सब काम हिंदी में होना चाहिए, तो हिंदी में सब काम होता था। भारत सरकार को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को अगर वो पत्र लिखते थे तो हम लोग हिंदी में पत्र भेजते थे, लेकिन उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में लगा देते थे ताकि यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को तकलीफ नहीं हो।
इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद यशवंत सिन्हा ने आईएएस से इस्तीफा देकर जन सेवा करने का फैसला किया। वो जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जेपी चाहते थे कि वो तब तक आईएएस से इस्तीफा न दें जब तक उनकी आजीविका का प्रबंध न हो जाए।
कुछ हमको निराशा हुई जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया दुमका में चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पर मैं अपने बाकी जिम्मेदारियों के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का दिल्ली में चेयरमैन जबरदस्ती बना दिया लोगों ने कि एशियन गेम्स आ रहे हैं संभालो, और उसके बाद एशियन गेम्स आए, खत्म हुए, डीटीसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर फिर डीटीसी में एक नेता आ गए, उन्होंने बहुत फिजा बिगाड़ी और उनसे हमारी पटी नहीं, तो नतीजा ये हुआ कि स्ट्राइक हो गया और जबरदस्ती एक गले का बोझ बना हुआ था हमारे ऊपर डीटीसी। तो उससे भी मुझे बहुत निराशा हुई, और इस बात को खासतौर पर कि आईएएस में आप बहुत कमजोर हैं, कोई भी नेता जैसे तहे आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और आप पब्लिकली कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो वो सब सोचकर मैंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं। तब तक हमको पेंशन भी आईएएस का मिल रहा था, मेरे बच्चे भी सेटल हो गए थे, बेटी की शादी हो गई थी, तो मैंने कहा कि उपयुक्त समय है आईएएस छोड़ने का। 12 साल की नौकरी बची थी जब मैंने अपना इस्तीफा भेजा।
आरंभिक झिझक के बाद उन्होंने जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। वो चंद्रशेखर के बहुत करीब हो गए। जब वीपी सिंह सत्ता में आए तो उन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में जगह दी, लेकिन उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया।
मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण काम जनता दल के लिए उस समय कर रहा था। मैं जनता दल का महासचिव था, सेंट्रल पार्टी ऑफिस मैं चला रहा था, प्रवक्ता मैं था, और कैंपेन जो हो रहा था इलेक्शन का, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। जब सरकार बनने की नौबत आई तो उस समय वीपी सिंह हमसे बहुत सलाह मशविरा किया करते थे, बल्कि इसके बारे में भी कि कैबिनेट में किसको रखा जाए नहीं रखा जाए इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। मुझे लगता था कि पार्टी में जिस तरह मैंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री के दावेदार वीपी सिंह हमको विश्वास में लेकर काम करते रहे हैं, तो ये जाहिर है कि हमको कैबिनेट में रखेंगे। जब मैं राष्ट्रपति भवन गया तो मैंने देखा कि हमें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे हैं, जबकि जितने लोग के साथ हम काम करते थे उन सब लोगों को वो कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे थे। तो मैंने फिर सोचा कि अब वो तो उचित व्यवहार हमारे साथ नहीं करें, हम ही जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनेंगे इसका मतलब कि चंद्रशेखर गुट से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो ये चंद्रशेखर जी की भी तौहीन ही है। इसलिए मैं वापस लौट आया था वहां से, फिर मैं उनके मंत्रिमंडल में कभी शामिल नहीं हुआ।
चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाजपेयी मंत्रिमंडल में जब आरएसएस ने जसवंत सिंह के मंत्री बनने पर आपत्ति की तो उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। बाद में वो जसवंत सिंह की जगह पर भारत के विदेश मंत्री बने। यशवंत सिन्हा ने 2009 का चुनाव जीता लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं दिया गया। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से उनकी दूरी बढ़ने लगी और अंततः 2018 में 21 साल तक बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
हालांकि हमने इस बात की हिमायत की थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, लेकिन 2014 का चुनाव आते आते मुझे यह आभास हो गया था कि चलना मुश्किल होगा। मैं जिस स्वतंत्र विचार का व्यक्ति हूँ उस तरह के व्यक्ति को चलना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। और पार्टी ने हमारे लड़के को ऑफर दिया उस सीट का, वो जीते भी आए, मोदी जी ने उनको मंत्री भी बनाया। उसके बाद फिर भी मैं मोदी जी को सुझाव देता रहा, पत्र लिखता रहा कुछ कुछ मुद्दों पर। हमारा उनका फासला बढ़ा कश्मीर के मुद्दे को लेकर। मैं कश्मीर में चाहता था कि वाजपेयी जी की नीतियों का अनुसरण हो, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, इस आधार पर कश्मीर में लोगों से, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। और वाजपेयी जी के समय में आपको याद होगा कि हुर्रियत से भी बातचीत हुई थी एक राउंड, तब तक हम लोगों की सरकार चली गई। तो इसलिए जब कश्मीर बहुत अशांत हो गया था 2016 में, तो हम कश्मीर गए ग्रुप के साथ, फिर जाते रहे, कई बार गए, अभी हाल में भी गए थे जब हमको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। मैं जब कश्मीर दोबारा गया था 2016 के दिसंबर में, तो मुझे ऐसा लगा कि एक रास्ता निकल सकता है। तो मैंने वहीं से फोन किया श्रीनगर से प्रधानमंत्री के कार्यालय में कि मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। फिर मैं लगातार उस रिक्वेस्ट को रिन्यू करता रहा, उन्होंने समय नहीं दिया। मैं गृह मंत्री से मिला, वहाँ भी कोई संतोषजनक उत्तर हमको नहीं मिला। बाद में गृह मंत्री भी मिलने को तैयार नहीं हुए हमसे। तो हमको लगा कि पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं और क्यों कश्मीर में ये बातचीत का और शांति का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। वो मेरी बड़ी, एक सबसे बड़ी निराशा कारण बना। फिर मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में 2 साल पहले आज से एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय, जिसमें मैंने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है और जल्दी इसको ठीक करना पड़ेगा। और आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की, वो शायद नहीं होती अगर 2017 में मेरी बात को सुना गया होता। लेकिन बात सुनने की बात तो दूर रही, बुलाकर बात करने की बात तो दूर रही। क्या कहा गया मेरे बारे में कि 80 साल की उम्र में ये नौकरी तलाश रहे हैं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और चलते चलते मुख्य समाचार पुनः कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी तक किसी पार्टी ने सरकार बनाने का आधिकारिक तौर पर दावा नहीं किया है। वहीं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस या बीजेपी दोनों के लिए विकल्प खुला रखा है। इराक में ग्रीन जोन में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इराक में भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक इंडोनेशियाई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में अंतिम रिपोर्ट दी गई है, इसमें बोइंग 737 मैक्स विमान के डिजाइन में कमियां बताई गई हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।